नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आओ दर्शन भिक्षा दे दो।
आया हूँ शरण तिहारे,
आया हूँ शरण तिहारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के। सागर में जीवन नैया,
भव सागर में जीवन नैया।
डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले। निर्बल हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, हे प्रभु मेरे सहारे,
हे प्रभु मेरे सहारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के।
कदम कदम पर अंधियारा है,
कदम कदम पर अंधियारा है।
सूझत नाही मोहे, सूझत नाही मोहे। जीवन की तू ज्योत जला दे, जीवन के उजियारे,
जीवन के उजियारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़।
मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में बने हैं। और जैसे कि इन दिनों हम मार्कुस रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहे हैं और आप इस अध्ययन का अवश्य ही आनंद उठा रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने मार्कुस रचित सुसमाचार के 2 अध्याय और उसके 23 पद तक विचार किया था, जिसमें हमने देखा था कि फरीसी और सदूकी किस प्रकार व्यवस्था की बातों के प्रति यीशु मसीह का खंडन कर रहे थे। लेकिन हम इस बात को जान गए कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में व्यवस्था का पूरा करने के लिए आए, न कि उसे तोड़ने के लिए। तो आज हम उसके आगे अपने अध्ययन को बढ़ाते हैं, और इसके पूर्व कि हम अध्ययन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं ऐसे सुंदर समय के लिए जिसे बड़ी दया के द्वारा आप हमें देते हैं। विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में आज नहीं है, लेकिन आपकी करुणा के द्वारा आज हम जीवित पाए जाते हैं। ये इसलिए नहीं कि हम लोग अच्छे हैं, धर्मी हैं और बहुत गुणवान लोग हैं, लेकिन इसलिए कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर है। पिता परमेश्वर, इस वक्त जब हम आपके जीवित वचन में से सीखना चाहते हैं, वचन को मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम इस वचन में से सीखें तो ये वचन हमारे हृदयों को छूने पाए, हमसे बातचीत करने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन प्रियों के लिए जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो तकलीफ में हैं। प्रभु, आप उन पर भी कृपा दृष्टि कीजिए, उन पर भी अपने अनुग्रह प्रदान कीजिए, ताकि वे भी स्वस्थ भले चंगे किए जाएं, आपके वचन उनके हृदयों में कार्य करने पाए, ताकि वे जान जाएं कि आप व्यवस्था को पूरा करने वाले परमेश्वर, पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर और अनंत जीवन और शांति प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं कि आज आप हमसे प्रत्येक से विशेष रूप से बातचीत करने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिताजी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम मार्कुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद को पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे थे, तब उसने क्या किया था। मित्रों, यहां ध्यान दीजिए कि यीशु उनसे प्रतिवाद में यह नहीं कह रहा है कि उन्होंने सब्त के दिन का उल्लंघन नहीं किया। सत्य तो यह है कि यीशु उनसे विवाद करना ही नहीं चाहता था। वह उन्हें राजा दाऊद के जीवन की घटना स्मरण कराता है, और जब उसने वास्तव में मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन किया था, परंतु वह दोषी नहीं था, अर्थात दोषी नहीं ठहराया गया था। व्यवस्था यदि परमेश्वर के किसी दास पर कठिन परिस्थिति लाती है, तो उसका लागू किया जाना अनिवार्य नहीं है। यही दाऊद की स्थिति भी थी। हमारा प्रभु उसी का उदाहरण दे रहा था। मार्कुस 2 उसके 26 से 28 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उसने क्यों कर अबियातर महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी, और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। मित्रों, सब्त दिवस के संबंध में यीशु का यह सिद्धांत अति महत्वपूर्ण था। व्यवस्था मनुष्य के लिए बनाई गई थी, न कि सब्त के लिए, अर्थात न कि मनुष्य के लिए। यहां एक और मुख्य बात है, वरन तथ्य है, कि प्रभु यीशु सब्त का प्रभु है। आज एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब्त का दिन या प्रभु का दिन। स्मरण रखें कि हम पुराने व्यवस्था के अधीन सब्त के दिन का पालन करने के लिए नहीं है, क्योंकि व्यवस्था इसराइल राष्ट्र और परमेश्वर के मध्य वाचा थी, जिसे हम देख सकते हैं निर्गमन 31 अध्याय उसके 12 से 17 पद में। सब्त के दिन खेत की यह घटना और अध्याय 3 में दी गई सब्त के दिन आराधनालय में चंगाई की घटना परस्पर संबंध रखती है। अतः अध्यायों के विभाजन पर ध्यान न देते हुए हम अपना अध्ययन जारी रखेंगे। अध्याय 3 में सब्त के दिन आराधनालय में यीशु सूखे हाथ के मनुष्य को ठीक करते हैं, अर्थात चंगाई प्रदान करते हैं, जिसके कारण धर्म के अगुवे यीशु की जान के दुश्मन बन गए थे। इस अध्याय से विदित होता है, अर्थात पता चलता है कि यीशु ने असंख्य जनों को, अर्थात लोगों को चंगाई प्रदान की थी। उनकी गणना करना तो मात्र कल्पना होगा, परंतु यह स्पष्ट है कि मार्कुस चाहता है कि हम विश्वास करें कि चंगाई पाने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी, न कि एक या दो। हम मार्कुस 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और वह आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सप्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। मित्रों, अब यहाँ प्रश्न यह है कि क्या यह विकलांग व्यक्ति वहां जानबूझकर लाया गया था? मेरे विचार में इसका निश्चित उत्तर है हाँ। सप्त के दिन की पूर्व घटना एक संसारिक स्थान में घटी थी, अब यह दूसरी घटना एक धार्मिक स्थल पर घट रही है। प्रभु यीशु असंख्य रोगियों को चंगा कर रहा था और वे जानते थे कि यदि इस विकलांग व्यक्ति को भी किसी प्रकार उसके पास लाया जाए, अर्थात यीशु के समक्ष पहुंचा दिया जाए, तो वह निश्चय ही उसे चंगा करेगा। अतः वे उसे आराधनालय में ले आए। यह तो वास्तव में प्रभु यीशु के लिए एक बधाई का काम था। वे जानते थे कि यीशु दयावान है, परंतु उन्हें तो उसमें दोष खोजना था। उसने सप्त के दिन चंगाई का कार्य किया क्योंकि लिखा है कि वे उस पर दृष्टि गड़ाए हुए थे। वे हमारे प्रभु पर बस दोष लगाने का अवसर खोज रहे थे और उन्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तब हम मार्कुस 3 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। मित्रों, यीशु ने उससे बीच में खड़ा होने को कहा क्योंकि वह कुछ कहना चाहता था। तब हम मार्कुस 3 उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और उनसे कहा, क्या सप्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। मित्रों, धर्म के अगुओं ने सीख लिया था कि यीशु के प्रश्नों का उत्तर ना देना ही सुरक्षा है, क्योंकि उसके प्रश्नों का उत्तर देकर वे स्वयं ही हमेशा फंसते थे। तब हम मार्कुस 3 उसके 5 पद में आगे पढ़ते हैं, और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। मित्रों, अब यीशु ने प्रथाओं के बंधनों को तोड़ा और सप्त का दिन निर्धारित करने में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था उसके केंद्र में आया, अर्थात उस केंद्र बिंदु में लोगों को लेके आया। उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि वे जानते थे कि वे पक्षपात का ही उत्तर देंगे। यहां एक बात पर ध्यान दीजिए कि यीशु अप्रसन्न था। हम कह सकते हैं कि वह क्रोधित हुआ, जिसे लिखा है कि उदास होकर। मित्रों, डॉक्टर क्रोगी के अनुसार उदास शब्द का जो यूनानी व्याकरण रूप है उसका यथार्थ भाव है क्षणिक क्रोध, अर्थात वैर भाव से उत्पन्न पूर्व स्थित क्रोध नहीं। मनुष्य के मन की कठोरता से उसका दिल सदा ही दुखता था। यीशु उस व्यक्ति को चंगा करता है, वह सप्त का दिन था, परंतु सप्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया था और यीशु सप्त का भी प्रभु है, इसलिए उसने उस रोगी को सप्त के दिन चंगा किया। मित्रों, पिछले अध्याय की अंतिम घटना और यह घटना दोनों ही संयुक्त माना जाए, क्योंकि इन्हीं दो घटनाओं के कारण धर्म गुरुओं से उसका संबंध विच्छेद हो गया था। हम मार्कुस 3 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। मित्रों, सप्त के दिन से संबंधित इन दो घटनाओं के कारण वे खून के प्यासे बन गए, अर्थात पार्श्विक मानव उसके पीछे पड़ गए और क्रूस के तले खड़े होकर ही दम लिया। उसकी हत्या के षड्यंत्र का यह आरंभ था। तब हम मार्कुस 3 और उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया से और यदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। मित्रों, यहां देखने को मिलता है कि विभिन्न क्षेत्रों से मनुष्य आकर यीशु के पीछे हो रहे थे। हमारे प्रभु ने युक्ति पूर्वक वहां से कूच किया, अर्थात वहां से चल दिए, क्योंकि उसने स्वयं कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है। योना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 4 पद में हम इसे पढ़ते हैं, और अंत समय में वह स्वयं ही इन विरोधियों के मध्य यरूशलेम में उपस्थित था। यदि आप यहां उल्लेख किए गए स्थानों को नक्शे में देखें तो आपको ज्ञात होगा कि ये स्थान उस पूरे क्षेत्र को अविकृत कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में मनुष्य ईश्वर के वचनों को सुनने आ रहे थे। धर्मगुरु तो जनसमूह के भय से शांत थे, परंतु दूसरा संकट यीशु के लिए यहाँ पर यह था कि वह भीड़ से दब जाएगा। आज कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आता है तो उसे भीड़ से बचाना पड़ता है, अतः यीशु ने क्या किया, उसे भी बचना पड़ा। मार्कुस 3 उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। मित्रों, भीड़ उसके लिए बाधक ही नहीं थी, उसकी जान पर भी बनी थी, अर्थात उसके जीवन के लिए भी खतरा था, क्योंकि लिखा है कि उसने अनेकों को चंगा किया था। आप इसकी सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं लेकिन कई लोग चंगाई प्राप्त किए थे। यह मनुष्य के जी तोड़ प्रयास की गंभीरता निहित है। मेरे मित्रों, मानव जाति आवश्यकता ग्रस्त है और हम इसके सदस्य हैं। मार्कुस 3 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। मित्रों, यहां हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं यीशु को मान्यता देती हैं। इस विषय पर हम आगे चलकर कई विचार करेंगे। इस समय मैं दुष्ट आत्माओं के राज्य की चर्चा करना चाहता हूं। दुष्ट आत्माएं उसे मान प्रदान करती थी, परंतु यीशु को उनकी गवाही की आवश्यकता नहीं थी। अब हम 12 शिष्यों की बुलाहट और नियुक्ति के पीछे परमेश्वर का ईश्वरीय उद्देश्य देखते हैं। मरकुस 3 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। मित्रों, यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चुनाव यीशु का है, चाहे हमें वह अच्छा लगे या ना लगे, चुनाव का अधिकार उसे ही है, हमें नहीं। योना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मित्रों, यह श्रद्धा से रहित नहीं होगा यदि हम कहें कि उसने उन्हें चुना, इसलिए उनका उत्तरदायित्व उसी पर है। यह जान लेना बड़ी ही सांत्वना की बात है कि परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है और आप में एक अच्छा काम किया है और वह आपके साथ ही रहेगा, वह आपको पार लगाएगा। बुलाहट का यही एक अर्थ है। यीशु ने उन्हें बुलाया और उन्होंने उसका अनुसरण किया, अर्थात उसकी बात को सुना और उसके पीछे हो लिए। तब हम मार्कुस 3 उसके 14 और 15 पद में पढ़ते हैं, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार रखें। शिष्य बनाने के लिए यह उसका अंतिम बुलावा है। यहां वे वास्तविक प्रेरित बनते हैं और यीशु के सेवा कार्य में भेजे जाते हैं। वे यीशु से भी अलग किए जाते हैं, अर्थात यीशु शारीरिक अवस्था में उनके साथ उपस्थित नहीं रहते हैं। मार्कुस अधिक स्पष्ट नहीं करता है, परंतु जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 5 से 42 पद में पढ़ते हैं तो इसके बारे में और भी अधिक हमें चर्चाएं मिलती है। इस समय उनके लिए संदेश और कार्यविधि दी गई है। पद 15 से 19 में प्रेरितों के नाम भी दिए गए हैं। मैं इस सूची का शीघ्र ही अवलोकन करूंगा। शमौन पत्रस शिष्यों की सूची में वह पहला है। जब्दी का पुत्र याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना, अंद्रियास शमौन पत्रस का भाई जिसे प्रथागत पत्रस के साथ रखा जाता है, तब फिलिपुस, बर्तुलमै जो नथानेल भी कहलाता है, तब मत्ती, थोमा, याकूब जो छोटा याकूब हल्फाई का पुत्र था, तद्दै जो यहूदा भी कहलाया, शमौन कनानी और तब यहूदा इस्करियोती। मित्रों, इन मनुष्यों को प्रभु ने चुना था। हम मरकुस 3 उसके 20 और 21 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। मार्कुस हमें यह दिखाना चाहता है कि यीशु कितना अधिक व्यस्त रहता था। उसके मित्रों का व्यवहार देखिए। यदि कोई किसी सांसारिक बात में अपना दिल और जान लगा दे तो उसकी सराहना एवं प्रशंसा की जाती है, जैसे कि संगीतकार, खिलाड़ी, कोई बड़ा व्यापारी, प्रसिद्ध चित्रकार, राजनेता इत्यादि। परंतु यदि कोई परमेश्वर की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए और परमेश्वर के लिए कार्य करे तो लोग उसे पागल कहते हैं। मित्रों, मार्कुस 3 उसके 22 पद में हम पढ़ते हैं, और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे कि उसमें शैतान है, और यह भी कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मित्रों, बलजबूल एक अन्य जाति देवता था जिसे यहूदी दुष्ट आत्माओं का सरदार कहते थे, और उनका कहना था कि उसी की सहायता से प्रभु यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हम आगे मार्कुस 3 उसके 23 से 26 पद में पढ़ते हैं, और वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है, और यदि किसी राज में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा, और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाता। मित्रों, यीशु एक सीधी सी बात कहता है कि वह दुष्ट आत्माओं के सहयोग से दुष्ट आत्माओं का बहिष्कार नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसी स्थिति में दुष्ट आत्माओं के परिवार में फूट पड़ जाएगी और विभाजन हो जाएगा और वे एक साथ नहीं रह पाएंगे। तब हम आगे देखते हैं मार्कुस 3 उसके 28 से 30 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। मित्रों, यह अक्षम्य पाप है, अर्थात इस पाप की क्षमा नहीं है। वे यीशु को, जो ईश्वरत्व का दूसरा व्यक्ति है, उसे दुष्ट आत्मा से संयोग करने का दोषी ठहराते हैं, जबकि वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कार्य करता था। इस प्रकार से ईश्वरत्व के दो व्यक्तियों का इनकार कर रहे थे, वे मसीह का स्थायी इनकार कर रहे थे और वे पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे थे। वे अक्षम्य अपराध थे, अर्थात ये अपराध अक्षमाशील थे। आज एक अक्षम्य पाप करना संभव नहीं है। यीशु इसी अक्षम्य पाप के लिए मरा था। आज ऐसा कोई व्यक्ति या कोई पाप नहीं है जिसकी क्षमा यीशु प्रदान न कर सके। मित्रों, सत्य तो यह है कि अविश्वासी का स्वभाव और अवस्था ही है जो अक्षम्य है, उसका काम नहीं। मनुष्य यदि शब्दों से निंदा करता है तो वह उसे दोषी नहीं ठहराते, यह उसके मन की अवस्था है जो अस्थाई है। पवित्र आत्मा के अपराध बोध के कार्य को मन और जीवन में विरोध करना उसके विरोध पाप करना है। मित्रों, हम आगे देखते हैं मार्कुस 3 उसके 31 से 35 पद में लिखा है, और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं, और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। मित्रों, यीशु के भाई याकूब और यहूदा ने भी पत्रियां लिखी थी, परंतु उन्होंने अपने आप को यीशु का भाई नहीं कहा। हर एक जन जो मसीह में है वह सांसारिक भाई से अधिक घनिष्ठ संबंध में है। यही कारण था कि उसने वचन के सुनने वालों को अपना घनिष्ठ भाई और बहन और माता कहा था। यह महत्वपूर्ण बात है कि मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ उचित संबंध में रहे। उसे मुक्तिदाता ग्रहण करने के द्वारा हमें पुत्र होने का अधिकार है। प्रिय मित्रों, हम योहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर इस वचन के द्वारा स्पष्ट हो गया है कि जो लोग उसके वचन को सुनते हैं वे उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, उन्हें संतान होने का अधिकार दिया गया है, और जो लोग वहां पर थे जो वचन को सुन रहे थे वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां थी, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरे भाई और बहन और माता हैं। मित्रों, आज क्या प्रभु यीशु मसीह का ये वचन मेरे जीवन में और आपके जीवन में ऐसा कार्य करता है? क्या हम आज प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्या आज हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? हो सकता है कि हम अपने जीवन में मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, और हो सकता है कि हम बाइबल के वचनों को जानते हैं, और हो सकता है कि हम बहुत अच्छे जीवन जीते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने आज तक प्रभु को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता होने का सौभाग्य नहीं दिया है। मेरे मित्रों, आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे ताकि वह आपके जीवन में आए, आपके पापों को क्षमा करे और आपको अपने उस उद्धार का आनंद दे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वो अनंत जीवन हमें देता है। आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें ताकि प्रभु का ये वचन मेरे जीवन में और आपके जीवन में कार्य करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप व्यवस्था को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप उन लोगों से प्रेम करते हैं जो आपके वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। आप नहीं चाहते कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले बने और उसके अनुसार चलने वाले ना बने। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आपका भय माने और आपको अपने जीवन में आमंत्रित करें। पिताजी, हमारी प्रार्थना है हमारे उन तमाम श्रोता भाई बहनों के लिए जो जंगल के बीच में, पहाड़ों में, गलियों में, घरों में और जहां कहीं भी पाए जाते हैं आपके वचन को सुन रहे हैं। प्रभु, आप उनके जीवन के हर एक पापों को आप क्षमा करें जो आपसे क्षमा मांग रहे हैं, ताकि वे भी उस आनंद को अपने जीवन में पा सके जो आप उन्हें देना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी माता है, प्रभु हम भी इस मीठी आवाज को आपसे सुनने पाए कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। यूहन्ना 1:12 के अनुसार कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हाँ प्रभु, हम आपका बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, आप हमारी सहायता करें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान।